LITVN's के सौजन्य से अर्पा रेडियो और साधना फाउंडेशन की प्रस्तुति ओजस्विनी और नव्या महिला सम्मान 2023।
चिंता सबकी ठीक है पर थोड़ी परवाह अपनी करो।
अनुभव की पोटली के साथ प्रेरणादायी ममता मई महिलाओं को सम्मान ओजस्विनी सम्मान।
समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे।
नई रोशनी और नए जमाने की प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की धनी युवा महिलाओं का सम्मान नव्या सम्मान।
नजर है मेरी सपनों पर, मत उलझाओ झंझटों में।
आज है हमारे साथ डॉक्टर भूमिका गिजरे, मनोवैज्ञानिक और काउंसलर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही डॉक्टर भूमिका से बातचीत कर रही है मातृका।
मन की बीमारियों को समझकर उसका इलाज करने वाला होता है मनोचिकित्सक, और मनोवैज्ञानिक वो होता है जो मन की बातों को समझकर उसकी काउंसलिंग करे। और अर्पा रेडियो ने ऐसे ही एक मनोवैज्ञानिक को चुना है नव्या सम्मान के लिए। मैं हूँ आपके साथ मातृका, और आज हमारे साथ है डॉक्टर भूमिका गिजरे, जो वैसे तो हर उम्र के लोगों का मन पढ़कर उनकी काउंसलिंग करती हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में उनका नाम बाल मनोरोग विशेषज्ञ के तौर पर प्रचलित। तो आइए बात करते हैं बाल मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूमिका गिजरे से।
मेरा नाम भूमिका गिजरे है। बाय प्रोफेशन मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और सर्टिफाइड करियर काउंसलिंग भी हूँ। तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, उसको डील करने का मेरा पेशा है। और जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अपने आगे फ्यूचर को लेकर कि आगे कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आगे करियर कौन सा ऑप्ट करना है, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं असेसमेंट करके कि उनके लिए, उनके पर्सनालिटी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए राइट चॉइस कौन सी होगी।
शुरुआत करते हैं आपकी चॉइस से कि आपको कब और ये कैसे पता चला कि आपको इस फील्ड में अपना करियर बनाना है।
जनरली आज के बच्चे यही सोचते हैं कि हम एक बार में सब्जेक्ट ऑप्ट करें और बस एग्जाम दे दें और वो चीजें हमको इंटरेस्ट आने लगेगी अपने करियर में। बट ऐसा कई बार नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हमको उस उम्र में डिसीजन लेना पड़ता है जब हम बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते। तो उस वक्त हमको पूरे फ्यूचर का डिसीजन लेना होता है कि पूरी लाइफ हम लोग वही काम करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है हमको तुरंत समझ में नहीं आता है। तो जब मैं भी एक उस एज में थी तब मुझे भी समझ में नहीं आया था, बट उसके बाद मैं जब काम करती गई, बाहर निकली, तो मुझे समझ में आया अपने आप में कि मेरा ध्यान किस ओर जा रहा है। मैं अपने काम को छोड़कर मैं लोगों के सोल्यूशन के पीछे पड़ी रहती थी कि उनको ये प्रॉब्लम क्यों है, वो कैसे ठीक होगा। तो फिर ऐसे धीरे धीरे, अगर मैंने स्कूल में टीचिंग भी की हुई है तो मेरा बहुत सारा टाइम बच्चों के प्रॉब्लम्स पे रहता था कि वो क्यों रो रहा है, उसको लिखना क्यों नहीं बन रहा है, वो डरता क्यों है। तो मैंने देखा कि मुझे बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना बहुत अच्छा लगता है और प्रॉब्लम सॉल्यूशन में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने फिर ऐसा काउंसलिंग का कोर्स किया, फिर मैंने और आगे फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड पूरी स्टार्टअप पढ़ाई की। आज मैं रिसर्च फील्ड में हूँ, बच्चों के ही फील्ड में, डेवलपमेंटल डिलेज पर मेरा रिसर्च भी चल रहा है और हॉस्पिटल में मैं एज अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट भी काम करती हूँ। स्कूल में भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कि जो बच्चों को बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, जिनके घर में कुछ इश्यूज हैं, जो इमोशनल डिस्टर्ब होते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स को और पेरेंट्स को गाइड करना कि भाई आपके बच्चों में ये चैलेंजेस हैं और इसको ऐसे डील करना है। तो ऐसे बहुत जगह काम करके एक्सपीरियंस लेते हुए मुझे समझ में आया कि दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पे मैं काम कर सकती हूँ। और फिर मैंने धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू किया। फिर मैंने अपनी काउंसलिंग की सेंटर खुद का ओपन किया। फिर मैंने फ्रेंचाइजी एसोसिएशन मैंने किया, पुणे के कंपनी है, वहां पर मैंने एसोसिएशन लिया कि टेस्ट को हम यूज करते हैं बच्चों पे, जब टेस्ट करते हैं करियर सिलेक्शन के लिए। तो मैंने ऐसे अपना काम बढ़ाती गई मैं, और अच्छे दिल से कुछ काम करो किसी के अच्छे के लिए तो सक्सेस मिलती जाती है। तो बस वही है, नेक काम करते रहना है, हेल्प करते रहना है, तो आप भी सब अच्छा होता रहेगा होपफुली।
आपकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत सारे अलग अलग आयु वर्ग आपके पास आते हैं इलाज के लिए, तो वो आयु वर्ग क्या क्या होते हैं और उनमें किस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलती है?
मानसिक समस्या एक बहुत आम बात है जो कि एक मिथ बन के रह गई है कि ये छुपाने वाली चीज है या आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो आप पागल हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इस सोर्स के थ्रू अवेयर करना चाहती हूँ सबको कि ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि आपको जब बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज है तभी आप काउंसलिंग करने आप जा सकते हैं। जब मैं इस फील्ड पर आई तो मैंने देखा कि छोटे बच्चे से लेकर एडल्ट मींस रिटायरमेंट के बाद एक जो बुजुर्ग अवस्था होती है तब तक के हर एज ग्रुप में अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। और चूंकि हम एक लाइफ जी रहे हैं, हम इंसान है, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो जैसे हमारा फिजिकल हेल्थ होता है वैसा हमारा मेंटल हेल्थ भी होता है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है और दोनों ही हमारे एनवायरमेंट से भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ चीजें बायोलॉजिकल होती है, जेनेटिक होती है जब बच्चा पैदा होता है, तो कुछ चीजें वो अनुवंशिक अपने माँ बाप से लेकर आता है, जैसे कि वो कैसा दिखता है, रंग रूप, हाइट, पर्सनैलिटी, बट बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो अपने एनवायरमेंट से ग्रैब करता है जब बच्चा पैदा होने के बाद से डेवलपमेंटल जो पीरियड होता है उसका तब तक इतनी सारी डेवलपमेंटल जो प्रोसेस हुआ है एक इंसान बनने में कंप्लीट, तो उसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ हो ऐसे कैसा हो सकता है। बहुत सारा प्रोसेस थॉट हो चाहे शारीरिक हो सबका कंट्रोल ब्रेन से होता है और जहाँ ब्रेन होता है माइंड होता है वहां मेंटल हेल्थ आना ही है। तो दिस इज बट ऑब्वियस कि हर एज ग्रुप में अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं, बात है कि उनको सही समय में समझो, उसका इंटरवेंशन करो, सलाह लो और सही प्रोसेस के साथ आगे बढ़ो, वरना छुपी हुई चीजें बहुत बड़े रूप में आती है और तब हम उसको कुछ कर नहीं पाते हैं, उतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम अगर हम बोलें तो वो सही टाइम पर चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बोलना नहीं सीखते, समझना नहीं सीखते, ये सब हो गया डेवलपमेंटल पीरियड का जो प्रॉब्लम आती है जो मेंटली कनेक्टेड है। उसके बाद होती है प्यूबर्टी, जब टाइम आता है जब एडोलेसेंट होते हैं बच्चे, टीनेज में आते हैं तब उनको इमोशनल डिस्टर्बेंस होने लगता है, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, उनको स्टडी रिलेटेड कंफ्यूजन होने लग जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया का इतना बड़ा हब हो गया है ये कि सारी पर्सनालिटी उसके थ्रू ही डेवलप हो रही है और जो कि टोटली फेक है, जो हम सोशल मीडिया में देखते हैं इट्स नॉट रियल 100%, बट बच्चों को जो एडोलेसेंट है उसमें उनको दे डोंट नो कि रियलिटी फैक्ट चेक क्या है, क्या झूठ है, तो वो उसको लेकर चलते हैं। तो उस राह में भी बहुत सारे मेंटल चैलेंजेस आते हैं, जब माँ बाप से रिश्ता खराब होने लगता है, उनका बिहेवियर चेंज होने लगता है। अब जब बात आती है यंग एज की, जब बच्चा कॉलेज में जाता है तब वो अभी बहुत ज्यादा फेम चल रहा है डिप्रेशन, एंजाइटी, वो कुछ भी सिम्टम्स लेकर इंटरनेट से, इंस्टा से लेकर वो खुद ही आते हैं। कई बार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैम हमको ना डिप्रेशन हो गया है, मैम हमको ना एंजाइटी हो गई है, तो ये रहता है कि दे डायग्नोज बाय देमसेल्फ जबकि वो बातें सुनी हुई हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वो जो उनको फ्यूचर का भी कंसर्न रहता है उस एज में, रिलेशनशिप में इंडल्ज हो जाते हैं बिना जाने कि कौन कैसा है, मीन जजमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है उस एज तक के। तो वो भी एक मेंटल हेल्थ में ही आता है कि उसी से उनका स्ट्रेस जनरेट होता है, एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है, कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये चैलेंजेस यंग में आता है और आफ्टर मैरिज या करियर अचीव करने के बाद में रिलेशनशिप इश्यूज देखे जाते हैं कि कई बार पर्सनालिटी मैच नहीं कर होती है, कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाती है हस्बैंड वाइफ में, या आजकल दोनों वर्किंग होने के कारण जो एनवायरमेंट है फैमिली का वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं लड़की या लड़कियां, तो उसके वजह से उनके रिलेशनशिप में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसके चलते बहुत सारे उनके फिजिकल जो नीड्स होते हैं वो पूरे नहीं होने के कारण उनके रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल पाते हैं। और आजकल इतना हलचल मचा हुआ है दुनिया में कि सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, तो एक शांति होती है ना मन की शांति, वो किसी के पास है ही नहीं। तो उसके ना रहने के कारण माइंड वॉन्ट्स चेंज चेंज चेंज, तो शादीशुदा लाइफ में अगर ऐसा दिमाग रहेगा कि चेंज चेंज चेंज, तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आना तय है. तो वो भी एक मेंटल हेल्थ की समस्या में आता है, जो कि बहुत आम बात है. तो मैरिज काउंसलिंग भी होती है, कपल काउंसलिंग होती है, फिर जब फीमेल मेल माँ बाप बनते हैं उनके बाद में भी उस लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं. एक नया एनवायरमेंट हो जाता है, उसके बाद में भी फीमेल्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, प्रेगनेंसी के दौरान में प्रीनेटल टाइम में भी बहुत सारे मूड स्विंग्स हार्मोन चेंज होने के कारण भी फीमेल्स को बहुत सारी तकलीफों का इमोशनल डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माहौल चेंज हो जाता है. तो उस वक्त भी हम काउंसलिंग करके उनको उनके माइंड को शांत करने का ट्राई करते हैं और उनको ट्रीटमेंट थेरेपीज बताते हैं विदाउट मेडिकेशन. जो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, जो मेडिसिन देते हैं और जो मेंटल हेल्थ पे वर्क करते हैं दैट इज साइकेट्रिस्ट, और हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं हम काउंसलिंग करते हैं, सीबीटी थेरेपी देते हैं, हम बिना मेडिसिन के नेचुरल वे में थेरेपी करते हैं जिससे कि उनके जो थॉट्स हैं उन पे इम्प्रूवमेंट आ जाए. तो ये सब होता है आफ्टर मैरिज का टाइम होता है. तो फिर उसके बाद में फिर अब जैसे लूप में चलता है, बच्चा जैसे एडोलेसेंट हुआ, बच्चा बड़ा हुआ, माँ बाप के प्रॉब्लम अलग वे में बढ़ जाते हैं. तो ये पैरेलली चलता रहता है, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है बच्चों के नए 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 मेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं, वैसे ही माँ बाप भी नए 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 एक्सपीरियंसेस को अनुभव कर रहे हैं बच्चों के साथ में. तो उसके साथ में पैरेलली उनके भी मेंटल चैलेंजेस नए नए तरीके से दिखने लगते हैं एज बाय एज. तो एज तो माँ बाप का भी बढ़ रहा है और बच्चों का भी बढ़ रहा है,
और उसके साथ साथ जो मानसिक तनाव
है और वो भी चेंज होती जा रही है. तो वो पूरी चलती है एडल्टहुड तक के, मींस आफ्टर रिटायरमेंट में भी. अब मैं एग्जांपल दूं कि काउंसलिंग की नीड होती है, माहौल चेंज हो जाता है, लोगों की जो नौकरी करने की आदत होती है रोज की शेड्यूल वो स्टॉप होके घर पे रहना है, और उस वक्त बच्चा बिजी हो चुका रहता है. अब उसके पास टाइम नहीं है कि वो बात करे, कहीं ले जाए या ऐसा, तो वो एक अलग चैलेंज हो जाता है. तो मैं वही कह रही हूँ कि बच्चा पैदा होता है और बड़े होते तक लूप में चैलेंजेस आते रहते हैं लाइफ में, और हर पार्ट में काउंसलिंग इज वेरी कॉमन. आप हर मोड पर काउंसलिंग ले सकते हो. इसका ये मतलब नहीं होता कि जब बहुत ही ज़्यादा इश्यूज बढ़ जाएं तभी हमको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, ऐसा नहीं. आप हर एक पड़ाव में आकर सलाह लेकर आप आगे बढ़ सकते हो, इट्स वेरी कॉमन.
हमारे आज के समाज में और ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि मानसिक समस्या यानी पागलपन. तो अगर लोग आपके पास आते हैं तो कैसे डील करते हैं?
हाँ, ये जनरली पागल वर्ड एक बहुत अजीब सा देखा जाता है, जबकि इट्स ओके ये बहुत कॉमन वे में भी हम लोग यूज करते हैं बहुत नॉर्मल टर्म में, बट जब बात आती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तो उनको नहीं जाना होता है, जस्ट मिथ की कोई हमारे बारे में गलत ना समझ ले. तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाने से हम हेजिटेट नहीं करते हैं कि भाई हमको सर्दी हो गई है, जुकाम हो गया है, बुखार हो गया है, पेट में दर्द है, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वैसे ही हम मेंटल हेल्थ के लिए भी अगर जा रहे होते हैं तो उसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए. और इसी के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे जो बीमारियां हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो मेंटली ही फिजिकल तक आती है. बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लो तो एक हार्मोन होता है जो ब्लड में मिक्स होने लगता है, उसके कारण आजकल कितना डायबिटीज का कंप्लेन आ रहा है, स्ट्रेस का कंप्लेन आ रहा है, हार्ट स्ट्रोक्स आ रहे हैं. तो ये सारी चीजें इसीलिए क्योंकि एक जो एनवायरमेंट है इट्स नॉट गुड. और वो बॉडी से स्टार्ट नहीं होता, वो होता है मेंटली स्टार्ट होता है, माइंड से स्टार्ट होता है, और वो धीरे धीरे फिजिकल तक आता है, तब लोग एक्टिव होते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है. तो ये वर्ड को हमको चेंज करना चाहिए. ये एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है, तो मैं सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है आपको अपने लाइफ में, सेटल डाउन होने में कुछ कंफ्यूजन है, दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप बेझिझक होके काउंसलिंग के लिए आइए, बहुत ओपनली सबको बताइए और अवेयर करिए कि हम काउंसलिंग में गए थे और अब हमको सल्यूशन मिल गया है, हमको राह दिख गई है और हम अब नया डिसीजन लेने जा रहे हैं. इसमें पागल वाली बात आती ही नहीं है भाई. ठीक है, एबनॉर्मल नॉर्मल दो टर्म्स होते हैं. एबनॉर्मल उस लेवल में बोला जाता है जब इंसान अपनी केयर करना छोड़ दे या केयर करने के लायक ना रह जाए, कि उनको ब्रश भी कराना पड़ रहा है, चलना सिखाना पड़ रहा है, कपड़े पे कैसे पहनना है, नहाना कैसा है, खाना कैसा है, ये अगर सारी चीजें नहीं कर पा रहा है इंसान, तब हम एक टर्म देते हैं मेंटली रिटार्डेड
या एबनॉर्मलिटी का डायग्नोज होता है उसके लिए भी एक अलग है, बट ऐसा उसको स्टैम्प लगा के कोई चिढ़ाना या टीज करना उद्देश्य नहीं होता है. ये कंडीशन है माइंड का कि जब वो अपनी हेल्प कर पा रहा है. सारी चीजें ना ब्रेन से कनेक्टेड है. अगर ब्रेन एक्टिव है, आपका माइंड अच्छा है, आपके अच्छे थॉट्स हैं, आपका सारा डिसीजन और अपना सेल्फ हेल्प केयर कर सकते हैं. दैट इज नॉर्मल में ही आता है वो. तो उसमें पागल वर्ड की कोई बात ही नहीं है. सब चीज जायज है और सब चीज बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए.
मुझे कब पता चलेगा कि मुझे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है? मुझे अपने अंदर ऐसा क्या बदलाव दिखेगा कि मैं समझूंगी कि हाँ, अब मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए?
ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन होता है. रोज के दौरान अगर हम कुछ अलग सा फील कर रहे हो कि अभी हमको लग रहा है कि मैं बहुत, सब लोग हैं मेरे पास में लेकिन मैं बहुत अकेली अकेली सी हूँ, या मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है थॉट्स में, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, या कोई बात है जो मेरे दिमाग में पूरे समय तक चल रही है, तो अगर ऐसा कुछ आप के दिल दिमाग में ऐसे कोई थॉट्स आ रहे होते हैं जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हो बट आप उससे परेशान हो, तो आपको पहला कदम उठाना चाहिए कि सलाहकार के पास जाकर आप सलाह ले लो. क्योंकि हाँ, फ्रेंड्स भी होते हैं आप जिससे शेयर कर सकते हो, बट कुछ बातें हम फ्रेंड्स को बता सकते हैं, बट कई बार होता है कि हम फ्रेंड्स को, पेरेंट्स को बताने के बाद भी वो आंसर हमको नहीं मिलता, वो रिजल्ट हमको नहीं मिलता जो हम चाह रहे हैं. तब आप जज कर लो कि नो, मुझे प्रोफेशनल हेल्प ही नीड है. वहां से शायद जल्दी से पता चल जाए, अर्ली इंटरवेंशन हो जाए और हम सही जगह पर आने में हमारे लिए रास्ता बहुत इजी हो जाएगा. अदरवाइज अगर वो थॉट्स में हम फंस गए तो फिर आपको टाइम लगेगा वहां से निकलने के लिए और मेहनत भी करनी पड़ती है. तो इसीलिए अपने ऊपर बारीक ऑब्जर्वेशन रखो, अपने बारे में जानो पहचानो, हम कौन है, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है. उसके बाद जब आप ये जान जाओगे कि हम क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है किसी भी इंसान के लाइफ में कि हम क्या है, हम कौन है. ये जिस दिन आपको क्लियर हो जाएगा ना, आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी. बट ये इतना बड़ा सवाल है कि इट्स नॉट ईजी टू फाइंड आउट, इसके लिए गाइडेंस की नीड होती है. तो जब अपने ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे, अपने फीलिंग्स मूड्स पर आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है जो जिससे आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो वो राइट टाइम है आपके पास, आप हेल्प ले सकते हो प्रोफेशनल की.
क्या किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मेंटल प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ में कोई बदलाव आता है और उसकी वजह से डिप्रेशन होता है?
डेफिनेटली. मैंने जैसा बोला कि माइंड और बॉडी दोनों इंटरलिंक्ड है. और कई बार फिजिकल हेल्थ के वजह से बहुत लंबी अगर कोई डिसीज चल रही है, कोई बीमारी हो गई है जिसके कारण हम नॉर्मल रूटीन में नहीं रह पा रहे हैं, बहुत सारी चीजों से कटे जा रहे हैं, तो एक जगह पर होने के कारण, एक माहौल में कंटिन्यू रहने के कारण, लोगों से कट जाने के कारण भी मेंटल हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं. क्योंकि एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है. क्योंकि कुछ टिपिकल टाइप की मेडिसिन चल रही होती है उसके वजह से हार्मोनल चेंज हो जाते हैं, कई बार साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे भी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट करता है, माहौल से करता है. आप रोज के रूटीन में नहीं रहते हो अगर कोई आपको डिसीज हो गया है तो उसके चलते में मेंटल हेल्थ चैलेंजेस देखे जाते हैं. और वाइस वर्सा होता है, मेंटल हेल्थ के कारण भी फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ब्रेन से ही सारे हार्मोन्स और सारी जो सीरम्स है वो क्रिएट होता है और ब्लड फ्लो के साथ पूरे बॉडी में वो पहुंचता है. उसके कारण भी हमारे फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ अच्छी होती है. तो दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, एक से दूसरे होने की संभावना है, दूसरे से पहला होने का संभावना है, बोथ आर इंटरलिंक्ड.
दो वर्ड्स हम हमेशा सुनते हैं, एक एंजाइटी और एक डिप्रेशन, या दोनों अलग अलग है या इंटरलिंक्ड है?
दोनों हैं तो अलग अलग, बट कुछ समय बाद में बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है वो इंटरलिंक्ड हो जाता है. क्योंकि पहले आपको होगा एंजाइटी, जैसे छोटी सी अगर स्ट्रेस अगर हम बोले तो हर किसी को, छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बहुत एडल्ट हो, स्ट्रेस इज वेरी कॉमन. बट स्ट्रेस के भी बहुत ज्यादा डिग्री होते हैं, तरीके होते हैं स्ट्रेस के भी. थोड़ा सा स्ट्रेस हो इट्स ओके, बट बहुत ज्यादा हो, हमको फिजिकल टर्म्स में वो दिखने लगे कि हाथ कांप रहा है, पसीना आने लगा है, बहुत होठ हमारे सूख रहे हैं, बेचैनी फील हो रही है, हम बहुत लथार्जिक, मतलब हम बहुत ज्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, दैट कम्स इन एंजाइटी कि हमको अब एंजाइटी हो रही है, थोड़ी बहुत एंजाइटी ऑल्सो इट्स वेरी कॉमन कि भाई कल मेरी एग्जाम है तो मैं थोड़ा फील कर रही हूँ कि क्या होगा, मैं कैसा परफॉर्म करूंगी, दिस इज ओके. उसके कारण तो हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है. अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस और एंजाइटी ना हो तो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं. तो थोड़ा इज वेरी गुड, बट हर किसी का जो बड़ा रूप होता है वो हानिकारक होता है. तो एंजाइटी जब बहुत बड़े रूप में आ जाए, जब मैंने बोला ना कि फिजिकल टर्म्स में दिखने लगे कि होठ सूख रहा है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो मैंने बताया, दैट इज फिजिकल कॉज ऑफ एंजाइटी. ठीक है, जो शुरू हुई है माइंड से, थॉट से, बहुत सोचने के कारण, ठीक है, पैटर्न बनने के कारण. अब उसके बाद अगर वो ट्रीट नहीं हो पाया, वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाई, तो फिर वो बार बार एंजाइटी में फॉल होने के कारण वो लोगों से कटने लगते हैं, उनका एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है, उनका इम्प्रेशन लोगों के बीच में अलग हो जाता है, लोग टीज करने लगते हैं या फैमिली मेंबर नहीं समझ पाते प्रॉब्लम, तो वो धीरे धीरे कटने के कारण वो डिप्रेशन में आ जाते हैं. तो एक से दूसरे की इनकमिंग हो जाती है.
तो एंजाइटी में भी हमको साइकोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत है. yes. और डिप्रेशन में
यस डेफिनेटली, क्योंकि वहां भी आपको कैसे अपने सोच को चेंज करना है ये आपको काउंसलर गाइड करेंगे, साइकोलॉजिस्ट हेल्प करेंगे, और एंजाइटी में भी आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने में वो ही हेल्प करेंगे.
तो इस दौरान जब आप लोगों से मिलती हैं और लोगों की मानसिक समस्याओं का इलाज करती हैं, तब आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या होते हैं?
जैसे कि मैंने बोला, हर एज ग्रुप में अलग अलग केसेस हम देखते हैं, तो अलग अलग केसेस के साथ एज ग्रुप भी अलग अलग होते हैं. सपोज बच्चे आ रहे हैं तो वो टोटली डिपेंडेंट है अपने माता पिता पर, तो अब उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो टोटली डिपेंड है माँ बाप पर, कि हम जो बोल रहे हैं वो माँ बाप करे तो ओके, नहीं करे तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चा अपना खुद का माहौल चेंज नहीं कर सकता. तो वहां पे एक चैलेंज आता है कि माँ बाप का रूटीन फिक्स होता है, उनको टाइम नहीं होता जो हम कह रहे हैं वो एज इट इज करने के लिए. ठीक है, तो ये इश्यू हो जाती है. और उससे अगर हम आगे स्टेज में जाए एडोलेसेंट में, तो वो एक्सेप्ट पे नहीं रहते हैं कि हमको तो काउंसलिंग ही नहीं करानी है क्योंकि हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट पेरेंट्स जज करते हैं तो उनको पता होता है कि प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है कि एक्सेप्टेंस ही नहीं रहता है. आगे जाओ तो बच्चे अपने में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि फिर अगेन वही होता है कि पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ चेंजेस है हमारे बच्चों के बिहेवियर में, बच्चा मानने को तैयार नहीं. कई बार बच्चा फील कर रहा होता है कि भाई मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे थॉट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस है, अजीब सा फील हो रहा है. बट पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते कि ये तो नॉर्मल है, इसमें काउंसलिंग लेने की क्या जरूरत है. तो वो समझ नहीं पाते. इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि हम डील करें कैसे. कोई भी ट्रीटमेंट में 100% सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है. होता है बहुत सारे केस में कि हम पर्सनल सिर्फ पेशेंट पे, क्लाइंट पे ही ध्यान देकर हम उनको बहुत ज़्यादा उभारने का ट्राई करते हैं. बट अगर 100% सपोर्ट मिले फैमिली का, क्लाइंट का, एक्सेप्टेंस के साथ माहौल भी बदलने के लिए फैमिली का इम्पोर्टेंट होता है, तो अगर सब चीज़ मिल जाए तो वो चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी हमारे लिए भी ट्रीट करने में. तो यही एक्सेप्टेंस और एडजस्टमेंट के इश्यूज आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं. तो हमको बहुत देख के, लोगों को समझा के उनको बताना पड़ता है कि भाई ये सिचुएशन है, ये करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा. तो एक दूसरे को समझाने में भी हमारा बहुत एफर्ट लगता है उनको एक्सेप्ट करवाने में कि ये कंडीशन है. तो अगर ये सब बहुत इजीली एक्सेप्टेबल बन जाए हमारे समाज में, तो किसी की भी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएगी. यही कारण है कि इतना सुसाइडल रेट बढ़ गया है, इतना एडिक्शन बढ़ गया है, क्योंकि किसी को कोई समझने कोई तैयार नहीं है घर पे. तो ये कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण सल्यूशन नहीं मिलता है और वहीं वहीं घुट कर लोग या तो एडिक्शन में आ जाते हैं, ड्रग्स अल्कोहल का यूज करते हैं और फिर लत लग जाती है. बहुत सारे बच्चे अपना अकेले मनोरंजन में, स्क्रीन टाइम में आ जाते हैं, फिर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है आजकल. कोई सीक्रेट आइडेंटिटी बना के दोस्ती करना या फ्रॉड करना, छोटी छोटी बच्चियां हो, बच्चे हो, वो उसमें फंस जाते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो हमको डील करना पड़ता है. तो सबको एकजुट होकर ये डिसीजन लेना चाहिए कि इट्स वेरी कॉमन, और सबको साथ में मिलकर मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ हो ट्रीटमेंट के लिए सहयोग करना चाहिए.
जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए हम देखते हैं कि अगर हम ये प्रिकॉशन लें तो शायद हमको ये बीमारी ना हो. तो ऐसी ही मेंटल हेल्थ के लिए भी कोई प्रिकॉशंस हैं कि अगर हम ये प्रिकॉशंस लें तो शायद हमको मेंटल प्रॉब्लम ना हो?
मेंटल प्रॉब्लम ना हो मीन्स मैंने बोला कि इट इज़ वेरी कॉमन, और एज जैसे जैसे बढ़ती है, हालात बढ़ते हैं, हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, तो इट वेरी ऑब्वियस कि थोड़ा हमारे सोचने का तरीका भी बदलता है। जहाँ एक बदलाव आता है थोड़ा सा चेंज आपको फील होगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि एक लाइफ कंटिन्यू प्रोसेस है, इट्स लाइफ स्पैन। तो हाँ, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आ सकते। इसका एक ये सीधा सा सल्यूशन है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। आप क्या चाहते हो, आप क्या अचीव करना चाहते हो, अभी आपकी क्या इच्छा है, उसको ज़रा ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, क्या वो पॉसिबल है या क्या वो इम्पॉसिबल है हम जो चाहते हैं। अगर वो इम्पॉसिबल है तो फिर तो छोड़ ही दो, और अगर पॉसिबल है तो ये देखो कि अभी राइट टाइम में पॉसिबल है या इन फ्यूचर वो चीज़ें हो सकती है। और अगर राइट टाइम में अभी पॉसिबल है तो देन गो फॉर इट, प्लान करो आप लोग स्टेप बाय स्टेप। और अगर इन फ्यूचर पॉसिबल है बट आपकी इच्छा है तो फिर आप थोड़ा उसके लिए शांत हो जाओ, अपने थिंकिंग को पॉज दो। इससे आपको मेंटल हेल्थ इश्यू में बहुत फायदा होगा, आप कभी भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे। तो अपने थोड़े से थॉट्स को आपको संभाल कर रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, इज इट बेटर, इज इट राइट और रॉन्ग। ये थोड़ा सा अपने में ही अगर सेल्फ एनालिसिस लोग करते रहें तो कभी उतने डीप में आप फंसेंगे ही नहीं। तो वो बहुत बारीक सा ऑब्जर्वेशन की बात है, बट आजकल ये लोग सेल्फ एनालिसिस करना ही बंद कर दिए। ऑलवेज दे कंपेयर विथ ईच अदर्स, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, मैं ये चाहती हूँ, मैं वो चाहती हूँ। बट चाहना इज ओके, बट आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि चाहते हो ओके, बट क्यों चाहते हो, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है। अगर आप जो चाहते हो अगर वो एथिकली रॉन्ग है तो फिर आपका तो चाहना ही गलत हो गया। तो आपको वहाँ पे फिर आपको सेल्फ एनालिसिस की नीड है कि भाई क्या पैटर्न चल रहा है हमारे थॉट में। तो अगर हम सेल्फ टॉक थेरेपी करते रहे, खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहे, तो अपने दिमाग को बहुत शांति मिलेगी और उसके कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज में फंसना पॉसिबल नहीं होगा। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग थोड़ा सेल्फ टॉक थेरेपी करो, पॉजिटिव एरिया में रहो, पॉजिटिव रीडिंग्स करो, पॉजिटिव वीडियोस देखो, अच्छे काम करो। मतलब अर्निंग तो हर कोई करता है, बट अगर थोड़ा सा दान धर्म कहीं कर ले, अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहो, मेडिटेशन करो, जितना माइंड शांत रहेगा बहुत कम चांसेस है कि आपको प्रॉब्लम हो।
आखिरी में एज अ साइकोलॉजिस्ट आपका कोई संदेश हमारे श्रोताओं के लिए?
या संदेश मैं ये देना चाहती हूँ कि मेल हो फीमेल हो, हर किसी के लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस ही नहीं है तो फिर लाइफ का कोई सवाल ही नहीं होता है। लाइफ हम जी रहे हैं तो नए नए पड़ाव आते रहते हैं। बट मैंने जैसा अभी बोला कि अपने आप पर ध्यान दें, अपने लिए भी टाइम निकालें। सारे कर्तव्य करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप को मत भूलो। आप क्या चाहते हो, आपको किस में खुशी मिलती है। कई बार दबाव में या एनवायरनमेंट के कारण कुछ ऐसी चीज़ें करना पड़ जाता है जो आपको नहीं पसंद है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने लिए टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपना कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दो, कब क्या किससे कैसे बोलना है, शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करो, इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी से आप बच सकते हो। तो ये सब हमको ध्यान देने वाली बात है। सेल्फ लव इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, सो गाइज लव योर सेल्फ वेरी मच, स्टे हैप्पी, दूसरों को भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो, और अपना सेल्फ एनालिसिस इवेल्यूशन ज़रूर करते रहो, और टाइम टू टाइम काउंसलिंग ज़रूर लेते रहो। इससे आपको आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और उसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
औरत होना ही काफी है एक मंच में आने को,
तोड़े रूढ़ की साजिश है जो रची हमें लड़वाने को, संग शर्म के भर जाए हुंकार के, भर जाए हुंकार के।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।